नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर खेल के मैदान का हर अपडेट आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी एशिया कप के आगाज की, जहां T20 के इस मुकाबले में भारत और थाईलैंड इस समय दुबई में आमने सामने है। महिला क्रिकेट में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला इस समय जर्मनी और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। इससे पहले कल अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना जुआला चांगते वर्ष 2026 के बन गए हैं सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान और भारत के बीच खेल संबंधों की प्रगति को सराहा है और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला T20 एशिया कप के मुकाबले से, जहां आज हरमनप्रीत एंड कंपनी अपने अभियान का शानदार आगाज करने को बेताब है। हांगकांग ने टॉस जीत करके इस समय थाईलैंड ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 83 रन बना लिए हैं। भारत को इस बार एशिया कप में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में स्थान दिया गया है और इस पूरे टूर्नामेंट पे बारीकी से नजर रख रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विशेष, आज का मुकाबला रहा काफी आसान नजर आती है सेमीफाइनल तक की।
बिल्कुल शक्ति, आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत करी है थाईलैंड के सामने और आज आसानी से डोमिनेट करके जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत भारत को मिल गई है, 8 ओवर में 84 रन बन गए और सिर्फ 1 विकेट, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुई है स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है, 22 गेंदों पर 43 रन बना दिए उन्होंने, 6 चौके और 2 छक्के उनकी इस पारी में शामिल हैं। और प्रतिका रावल, जिन्होंने अभी तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला था, हालांकि वनडे में वो शानदार प्रदर्शन करती आ रही थी, आज उन्होंने अपना T20 डेब्यू एक बहुत ही अहम मौके पर किया है।
जी बिल्कुल, एक बहुत अहम मौका और एक बहुत अच्छा अवसर भी किया आपके पास। पाकिस्तान से भारत को मुकाबला खेलना है, उसके पहले एक मौका होगा कि हांगकांग और थाईलैंड के सामने एक सदी हुई और एक मंजी हुई शुरुआत हासिल की जा सके। लेकिन अगर भारतीय टीम के पूरे सफर पर नजर डाली जाए, भारत अभी दुबई में है जहां पर टीम एशिया कप खेलेगी, इसके एक सप्ताह के भीतर टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी, बिल्कुल अलग परिस्थितियां होंगी और 3 से 4 महीने में यह टीम ICC द्वारा आयोजित पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगी। एक बहुत ही टफ शेड्यूल है, लेकिन पूरे स्लॉट को अगर देखा जाए भारतीय टीम कितनी तैयार है।
शक्ति, वुमेन्स एशिया कप का जो फाइनल है वो 13 सितंबर को खेला जाना है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो एशियन गेम्स से पहले उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, क्योंकि 17 सितंबर को उनका अपना पहला मुकाबला जापान से खेलना होगा। इसके बाद वो क्वालिफाई, अगर मुकाबला जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए और वहां उसके बाद सिर्फ एक ही मुकाबला बचता है जो कि है फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहां काफी चैलेंजिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है और 50 ओवर फॉर्मेट में होगा, तो काफी अलग परिस्थितियां जो है भारतीय टीम के सामने रहेंगी। टफ शेड्यूल है, पर जैसा कि 2025 से हम देख ही रहे हैं, टीम ने जब से जीत दर्ज करी है तब से काफी मनोबल उनका ऊपर है।
जी बिल्कुल, आपने 2025 का जिक्र किया, जहां भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार विश्व कप का खिताब उठाया था और उसके बाद हालांकि T20 में वो विश्व कप के फाइनल में ना पहुंचने की कसक शायद इस एशिया कप के खिताब के साथ मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात की जाए हॉकी विश्व कप की, जहां बेल्जियम में इस समय पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। जर्मनी की टीम 2023 में जीती थी, अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतर चुकी है, वहीं स्पेन अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश में है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा करके कह सकते हैं कि कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले कल महिला हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को शूटआउट में हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।
एम्स्टर्डम फेम के वेगनर स्टेडियम में अर्जेंटीना ने सह मेजबान नीदरलैंड का लगातार चौथा महिला विश्व कप जीतने का सपना तोड़ते हुए शनिवार को पेनल्टी शूटआउट में उसे 3-1 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने पिछले विश्व कप फाइनल में मिली 1-3 हार का बदला भी पूरा कर लिया है। पिछली बार विश्व कप में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3-1 से ही हराया था। नीदरलैंड के लिए पहला गोल 30वें मिनट में दुनिया की नंबर एक ड्रैग फिल्कर माने जाने वाली येबी यानसेन ने किया। मैच के अंतिम क्वार्टर में अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रेनाटो ने 54वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में खींच दिया, जहां अर्जेंटीना के लिए विक्टोरिया ग्रेनाटो, ब्रिसा ब्रिगेसेर और सोफिया कायरो ने गोल दागे, जबकि डियाज जो का गोल अमान्य करार कर दिया गया। वहीं नीदरलैंड के लिए वीन मारी ने गोल किया, जबकि पीएन सेंडर्स, फेलिस एल्बर्ट्स और मोइस फ्रीके मौके को गोल में तब्दील नहीं कर सके और नीदरलैंड्स का 10वीं बार चैंपियन बनने का सपना फिर कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। इस निर्णायक मुकाबले में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली कप्तान ग्रेनाटो ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
I think it's really important for us. We fight together all the time. We are really happy for finally when this is final. We do a really good World Cup, so I'm really happy for the team.
वहीं विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में मेजबान बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पराजित किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
हम जब भी लड़ते हैं साथ लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए जीत के मायने बड़े होते हैं। कप्तान ग्रेनाटो के ये शब्द बताते हैं कि उनके लिए जीत कितना महत्व रखती है। अब हॉकी से रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना जुआना चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बगान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बैचिंग भूटिया से ये सम्मान प्राप्त किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है, तो कह सकते हैं कि एक बेहद रोचक पुरस्कार। अक्सर हम देखते हैं जहां पे दर्शक तय करते हैं, जहां पे जूरी बैठती है वो तय करती है, लेकिन यहां पे आपके साथी खिलाड़ी तय करते हैं कि कौन इस खिलाड़ी को, कौन इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। चांगते ने इससे पहले 2023-24 के सीजन में भी ये सम्मान अपने नाम किया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चांगते को बधाई दी है। इस बीच पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भारत और ब्राजील के बीच होने वाले मैत्री मुकाबले से पहले भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
I am really happy and a little bit jealous that the boys are going to play against Brazil, Uruguay and Panama. In my 26 years of professional play and 20 years of national team, I never got a chance. So the feeling that I'm getting is I'm a little bit jealous. I hope we can get the boys as fit as possible. I'm pretty sure all the boys are going to fight so much to be in this game. I just hope that they can get the best out of this game. It's a great experience.
तो जब भी कभी भारतीय फुटबॉल की बात आती है, हमने भाईचंद भूटिया का जिक्र किया जिन्होंने ये शानदार पुरस्कार दिया था सुनील छेत्री, और लगातार भारत धीरे धीरे ही सही, जिसको हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, उस रूप में बढ़ रहा है कुछ बड़ी उपलब्धियों की तरफ। लक्ष्य कहीं ना कहीं हर भारतीय का सपना है कि भारत की टीम, भारत का तिरंगा कभी फीफा के मंच पे भी नजर आए, और शायद ऐसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं भविष्य में उस सपने की राह को और मजबूत करते नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले ये फ्रेंडली मैच जो भारत और ब्राजील के बीच खेला जाना है, किस तरह का भारत में क्रेज होता है फुटबॉल को लेकर हमने फीफा विश्व कप के दौरान देखा था, उसी की राह पर एक ये मुकाबला शायद, जिसका तमाम खेल प्रेमियों को, फुटबॉल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर हैं, इसके बाद अब वो किर्गिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम समझौते किए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने खेल के क्षेत्र पर भी व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है।
आने वाले समय में कुराश और कबड्डी जैसे ट्रेडिशनल गेम्स की हमारी स्पोर्ट्स साझेदारी को नई ऊर्जा देंगे। आज की चर्चा ने हमारे संबंधों के भविष्य को एक स्पष्ट दिशा तय की है। अ स्ट्रॉन्गर इंडिया उज्बेकिस्तान पार्टनरशिप विल बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सेंट्रल एशिया।
खेल वो मंच जो एक तरफ स्पर्धा में आपको सबसे आगे रहना सिखाते हैं, दूसरी तरफ खेल आपको जोड़ते हैं दूसरे देशों से, तोड़ते हैं सीमाओं को और एक साथ लाते हैं कई दूसरे देशों को। श्री मोदी ने अगले महीने समरकंद में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को शुभकामनाएं दी हैं।
स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अगले महीने समरकंद में होने जा रहे चेस ओलंपियाड में इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
तो भारत के डी गुकेश जहां पर चुनौती रखेंगे भारतीय और सामने होंगे उनके सिंदारोव, और एक ऐसा मुकाबला जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर होगी और देखना होगा कि कौन इस गेम का नया चैंपियन बनके उभरता है। भारत जिस तरह से चेस की एक नई नर्सरी के रूप में उभरा है और जो एक पूरी लय विश्वनाथन आनंद से शुरू हुई थी वो लगातार आज प्रज्ञानानंदा जैसे युवा खिलाड़ियों तक, दिव्या देशमुख तक ट्रांसफर होती हुई नजर आती है। और आज संडे का दिन है तो फिर फिटनेस की डोज भी ली जाए। संडे ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। इस बीच दिल्ली में आयोजन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण देखने को मिला। संवाददाताओं से बातचीत में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है।
आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे 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 जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में एक घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, एक बेहतर सफर की बुनियाद भी है ये साइकिल, जो आपको संदेश देती है पॉल्यूशन से कुछ दूर हटने का, थोड़ा सा सहयोग अर्थव्यवस्था में करने का और लाइफ को फिटनेस के ट्रैक पर लाने का, एक अच्छा जीवन जीने का। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। तो वो समय जो कुछ फोन स्क्रीन से हटाया जाए, थोड़ी साइकिल चलाई जाए, थोड़ी कसरत की जाए, थोड़ा योग किया जाए। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि फिट इंडिया पहल देश को अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी।
ये जो सरकार के द्वारा फिट इंडिया का जो इवेंट है ये एक इतना बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा मानना है जितना फिट इंडिया रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर इंडिया रहेगा और उतना ही सेल्फ रिलायंट इंडिया रहेगा। तो मेरा मानना है इसको सिर्फ एक इवेंट के नजरिए से नहीं, एक मूवमेंट के नजरिए से हमें देखना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है यूथ की। जितने लोग इस इवेंट से या फिर इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक मूवमेंट बनाएं जिससे कि हमारा यूथ और जितने लोग हैं कि वो फिट रह सके, अ फिटर नेशन और स्ट्रॉन्गर नेशन।
तो गौतम गंभीर के शब्द थे, एक फिटर नेशन ही स्ट्रॉन्गर नेशन है, जो देश जितना स्वस्थ है उतनी मजबूत उसका भविष्य है। और इसी संदेश के साथ फिटनेस का ये कार्यक्रम, फिटनेस का ये मंच जो अब धीरे धीरे एक अभियान में, एक आंदोलन में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां संडे की सुबह लोग अपनी नींद को पॉज देकर के, एक ब्रेक देकर के साइकिलों पे निकलते हैं और दुनिया को देते हैं फिटनेस का संदेश। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं दुबई में खेले जा रहे भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप के T20 मुकाबले पर, जहां भारत ने इस समय 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए हैं। विशेष किस राह पे जाता हुआ मैच नजर आ रहा है और क्या क्या अपडेट है?
भारतीय टीम अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रही है, हालांकि अभी 2 विकेट गिर गए हैं स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के रूप में, लेकिन शफाली वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रही है 59 रन पर और वहीं हरमनप्रीत कौर भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटी हुई हैं। इसके बाद भारती फूलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसे बल्लेबाजों को आना है और टीम को एक मजबूत स्थिति प्रदान करनी है। तो ये मुकाबला जो है भारत की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, तो 10 ओवर के बाद ही अगर टीम का प्रदर्शन या अनुमान लगाने लगे कि मैच किस दिशा में जा रहा है, आपने कहा कि अभी भारतीय फूलमाली हैं, ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा हैं, तो वाजिब है कि एक गहराई इस टीम के बल्लेबाजी क्रम में नजर आती है। और गेंदबाजी का तो कोई तोड़ इस समय है नहीं, क्रांति गौड़ और श्रीचरणी जिस प्रकार की फॉर्म में चल रही है, देखना होगा भारत की नजर भी होगी कि थोड़ा और मार्जिन से मुकाबले में बढ़त बनाई जाए। और श्रोता, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।